पृष्ठ संख्या 153। कुमार विकल धूप धर्मी कविताओं का कवि। कुमार विकल की काव्य यात्रा बहुत लंबी नहीं है, वह लगभग 20 वर्षों की है। 70 के दशक के आसपास से 90 के दशक के आरंभिक वर्षों तक उनकी कविताओं की संख्या भी बहुत अधिक नहीं है। उनके कुल 3 संग्रह हैं, एक छोटी सी लड़ाई 1980, रंग खतरे में है 1982, और निरुपमा दत्त मैं बहुत उदास हूँ 1993। ये तीनों संग्रह कुमार विकल के जीवन काल में छपे थे। उनकी मृत्यु के बाद चीख नामक उनका एक नाटक पल प्रतिपल जून सितंबर में छपा है। कुमार विकल की काव्य यात्रा छोटी जरूर है, लेकिन सरल और सुविधाजनक नहीं। वह एक ऐसे समय और समाज में कविता लिख रहे थे जिसमें कविता या तो भाषिक छल के सहारे आत्मरति का साधन बनने को अभिशप्त रही है, या फिर निरंतर आत्म बलिदान का माध्यम। कुमार विकल मानते थे कि कविता आदमी का निजी मामला नहीं है। वह कविता की कला के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अपने समय और समाज के शोषित और पीड़ित मनुष्य के प्रति नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी से जोड़कर देखते थे। इसलिए वह अपनी काव्य यात्रा में दोहरे संघर्ष का सामना कर रहे थे। वह एक ओर भारतीय समाज में जनतंत्र के नाम पर उग रहे वनतंत्र में बढ़ती दरिंदगी के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, तो दूसरी ओर अपनी कविता को विश्वास भरी भाषा में अपने समय का अप्रिय सच कहने के लायक बनाने के लिए रचनात्मक संघर्ष कर रहे थे। इस दोहरे संघर्ष से पैदा होने के कारण ही उनकी कविता प्रायः आत्मा की चीख लगती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अपनी काव्य यात्रा के कठिन संघर्ष की प्रक्रिया से गुजरते हुए कुमार विकल ने कविता की ज्योति को अपने जीवन की बाती सौंप दी। कुमार विकल की कविताएं शुरू से ही हिंदी कविता के व्यापक पाठक समुदाय को आकर्षित करती रही हैं, सुधी जनों को ही नहीं, कविता प्रेमी साधारण जनों को भी। उनकी काव्य अनुभूति की विशिष्ट संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ है जिससे उसकी विशेष पहचान बनती है। उसमें एक ओर भारतीय समाज में क्रमशः बढ़ती मनुष्य विरोधी स्थितियों की दहशत भरी खबरें हैं, आम लोगों की जिंदगी की यातनाओं की चिंता पृष्ठ संख्या 154 है, खास लोगों के छल छदम की वास्तविकताएं हैं, शोषित पीड़ित मनुष्य के दुख दर्द से गहरी सहानुभूति है, वामपंथी राजनीति और विचारधाराओं के संकटों की पहचान है, और जनजीवन की अदम्य जिजीविषा में अटूट आस्था है, तो दूसरी ओर प्रकृति के रूप रंग रस गंध आदि से सघन आसक्ति है, और कोमल मानवीय भावों तथा संबंधों की संवेदनशील पुनर्रचना भी। कुमार विकल मूलतः धूप धर्मी कवि हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों की एक कविता में उन्होंने ठीक ही लिखा है, कुमार विकल जिसकी जीवन संध्या में अब भी धूप पूरे सम्मान से रहती है, क्योंकि वह अब भी धूप का पक्षधर है। कुमार विकल की काव्य यात्रा में धूप हमेशा कविता के साथ रही है। वह चंबा की धूप से धूप धर्म तक फैली हुई है। इस बीच उसके रूप और रंग कई बार बदले हैं, लेकिन धर्म नहीं। उसका धर्म है हर तरह के अंधेरे के खिलाफ खड़ा होना और लड़ना, लेकिन अंधेरे के खिलाफ खड़े होने और लड़ने से पहले जरूरी है उसको पहचानना। वह पहचान कुमार विकल की कविताओं में है, इसलिए उनकी कविता वास्तव में अंधेरे से धूप के निरंतर द्वंद्व की कविता है। निराला और मुक्तिबोध के बाद अंधेरे के विभिन्न रूपों की जैसी पहचान और उनसे संघर्ष की जैसी चिंता कुमार विकल की कविता में है, वैसे हिंदी के किसी दूसरे कवि की कविता में नहीं। कुमार विकल की अधिकांश कविताओं में किसी न किसी तरह के अंधेरे की ओर संकेत है, और उससे संघर्ष की गहरी चिंता भी। उसमें अपने समय, समाज, व्यवस्था, राजनीति, विचारधारा, परिवार और व्यक्ति की चेतना में फैले अंधेरे के विभिन्न रूपों की खोज और पहचान है। उनकी कविता में कहीं अमानवीय व्यवस्था के आतंक के अंधेरे की शिनाख्त है, तो कहीं खूंखार सत्ता द्वारा दमन और उत्पीड़न के अंधेरे की। अनेक कविताओं में पंजाब में फैले आतंक और दहशत के घने अंधेरे के विभिन्न रूपों के बिंबों और प्रतिबिंबों की बहुलता है। कुमार विकल के काव्य संसार में अंधेरे के आतंक की अत्यंत सघन और आवेगमयी अभिव्यक्ति उन कविताओं में है जिन्हें स्वयं कवि ने अंधेरे की कविताएं कहा है। इन कविताओं में आपातकाल के अत्यंत भयावह अंधेरे को मूर्त रूप में चित्रित किया गया है। खूनी नदी की यात्रा, पिपाशा, ट्रैफिक के नए कानून, जंगल कैद, इश्तहार आदि कविताओं को पढ़ते समय व्रेष्ट की अंधेरे समय की कविताएं याद आती हैं। आपातकाल का समय सचमुच आतंककारी अंधकार का समय था। वह उस समय के कवियों, लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों की पृष्ठ संख्या 155 सामाजिक चेतना, मानवीय संवेदना और रचनात्मक साहस की परीक्षा का समय था। ऐसे समय में कवियों के सामने खड़ी चुनौती और उनसे भावी पीढ़ी की उम्मीद तथा निराशा के बारे में ब्रिस्ट ने लिखा है। वह नहीं कहेंगे कि वह समय अंधकार का था, वे पूछेंगे कि उस समय के कवि चुप क्यों थे। कुमार बिकल की कविताएं गवाह हैं कि वह अपने समय के किसी भी अंधेरे के बारे में चुप रहने वाले कवि नहीं हैं। कुमार बिकल की कविता अपने समाज की व्यवस्था और साजसत्ता के बढ़ते अंधेरे की खोज के साथ साथ कवि की आस्था और विश्वास के केंद्र वामपंथी राजनीति और विचारधारा में पलते और बढ़ते संशय और दुविधा के अंधेरे की भी पहचान करती है, क्योंकि उसमें दूसरों की आलोचना का स्वर जितना प्रखर है, उतना ही अपनी और अपनों की आलोचना का भी। वैसे तो वामपंथी राजनीति और विचारधारा की विसंगतियों और कमजोरियों की आलोचना अनेक कविताओं में है, लेकिन उसका अत्यंत प्रखर स्वर मुक्ति के दस्तावेज कविता में सुनाई देता है। मुक्ति के लिए छटपटाता मेरा मन वामपंथी राजनीति के 3 शिविरों में भटकता है और हर शिविर से मुक्ति का एक दस्तावेज लेकर लौटता है। और अब शिविर दर शिविर भटकने के बाद कुछ ऐसा हो गया है कि मुझसे मेरा बहुत कुछ खो गया है, मसलन कई प्रिय शब्दों के अर्थ, चीज़ों के नाम, संबंधों का बोध और कुछ कुछ अपनी पहचान। कुमार बिकल ऐसी हर चीज़ की आलोचना करते हैं जो आदमी को कमज़ोर बनाती है, उसके मन में डर पैदा करती है, वह चाहे पार्टी में प्रतिबद्धता की वर्जनाएं हों या कुछ और। निर्मम और निर्भय आत्मालोचन का ऐसा स्वर हिंदी के मुक्तिबोध और पंजाबी के कविपाश की कविताओं में है। पृष्ठ संख्या 156। कुमार विकल ऐसे कवि नहीं हैं जो सारी दुनिया में अंधेरे की चिंता करते हैं, लेकिन घर परिवार के भीतर अनेक रूपों में मौजूद अंधेरे को भूल जाते हैं। घर आत्मीयता की जगह के बदले प्रायः यातना और घुटन का कंटीला बाड़ा बन जाता है। उसमें अगर पुरुष की तानाशाही का राज हुआ तो वहाँ स्त्री की गुलामी का अंधेरा अत्यंत घना और त्रासद होता है। तब स्त्री की जिंदगी अंधेरे से अंधेरे तक रोशनी की एक छोटी सी यात्रा बन जाती है। ऐसे अंधेरे की पहचान एक गली का अंधेरा में है, लेकिन भारतीय समाज, परिवार और परंपरा में स्त्री की गुलामी, शोषण और दमन के विभिन्न रूपों की गहरी चिंता और इन सबसे स्त्री की मुक्ति की जोरदार आवाज़ चीख नामक नाटक में व्यक्त हुई है। कुमार बिकल की कविता को अंधेरे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं, यहाँ तक कि कविता की बनावट और भाषिक रचाओं में आए बिंबों का अंधेरा भी नहीं। यद्यपि ये कविताएं जिस समय और समाज में पैदा हुई हैं उसकी छाप और छाया के रूप में काली हवाओं, अंधी गुफाओं और बेगवती काली नदियों के बिंब बार बार कविता में आते हैं, लेकिन कवि ऐसे बिंबों से मुक्ति चाहता है। मुझे लड़ना है अपनी ही कविताओं के बिंबों के खिलाफ, जिनके अंधेरे में मुझसे जिंदगी का उजाला छूट जाता है। इस संकल्प से ऐसी कविता की कामना और समझ सामने आती है जो बिंबों की बंद दुनिया से निकलकर लोकगीतों की खुली दुनिया में लौटना चाहती है। वह मुट्ठी भर रसिकों के हाथों से मुक्त होकर जनजीवन में रमना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कविताएं माँ के गीतों की पंक्तियों में खो जाएं, बंद कमरों से खुले चौपालों में लौट आएं। कुमार बिकल राजनीतिक कवि हैं, क्योंकि उनकी कविता पढ़ते हुए पाठकों को स्वाधीनता के बाद भी भारतीय राजनीति की कुछ अत्यंत भयावह वास्तविकताओं और त्रासद स्थितियों की संवेदनशील पहचान मिलती है। उनकी कविताओं में आपातकाल के गहरे आतंक के दिल दहलाने वाले चित्र हैं, नक्सलवाड़ी आंदोलन के खूंखार दमन की विभीषिका की अभिव्यक्ति है और पंजाब में आतंक के राज से उपजी दहशत की खबरें। लेकिन इन सब का सामना करती हुई कविता कभी भी उम्मीद और संघर्ष की भावना से मुंह नहीं मोड़ती। कुमार बिकल राजनीतिक घटनाओं पर नहीं, उनके सामाजिक अभिप्राय, जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव और मनुष्य के लिए उनके अर्थ की कविता लिखते हैं। पृष्ठ संख्या 157। वह प्रायः राजनीतिक व्यवस्था के अस्वीकारों और सत्ता के शिकारों के साथ गहरी सहानुभूति रखकर राजनीति के व्यवहारों की छानबीन करते हैं। फलतः कविता में राजनीति की विडंबनाओं और उन विडंबनाओं के कारण टूटते बिखरते मनुष्य तथा मानवीय आकांक्षाओं की नियति और दुर्गति की अभिव्यक्ति होती है। वे किसी राजनीतिक घटना का ब्यौरेवार वर्णन नहीं करते, बल्कि उस घटना की तह में छिपे ऐसे सच की तलाश करते हैं जो सतह पर दिखाई नहीं देता। ऐसी राजनीतिक कविता अपने पाठकों से वैचारिक सहमति से अधिक संवेदनशील समझदारी की मांग करती है और पाठकों को समकालीन राजनीति के बारे में प्रचलित और प्रचारित अनेक प्रकार के भ्रमों से सावधान भी करती है। आज़ादी के बाद भारतीय मध्यवर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा अवसरवाद का शिकार हुआ है। ऐसे लोगों में सबसे बड़ी संख्या उनकी है जो बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। वे समाज, संस्कृति और साहित्य में सब जगह सक्रिय दिखाई देते हैं। वे सुविधा के लिए दुविधा की भाषा बोलते हैं और सिद्धांत की सीढ़ियां चढ़कर सफलता के सिंहासन पर पहुंचते हैं। उनके लिए राजनीति, विचारधारा, प्रतिबद्धता और आस्था आदि दुनियादारी के साधन हैं। वह दुनियादारी को ही समझदारी समझते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में इस अवसरवाद की सबसे तीखी आलोचना मुक्तिबोध ने की है और कुमार विकल ने। अवसरवाद छद्म और पाखंड के सहारे पलता है। कुमार विकल को हर तरह के छद्म और पाखंड से चिढ़ है, वह चाहे समाज में हो, साहित्य में हो या रचना की भाषा में। कुमार विकल ने अवसरवाद के बुनियादी कारण की ओर संकेत करते हुए ठीक ही लिखा है, आदमी ने जाने हैं अब तक जितने जहर, उनमें से सबसे अधिक घातक है सुरक्षा की एक छोटी सी चाहत का जहर। जो सुविधा की चिंता और सुरक्षा की चाहत के शिकार होते हैं, उन्हें कुमार विकल तरक्की राम कहते हैं। वह तरक्की राम क्या क्या कर सकता है और कितनी भाषाएं बोल सकता है, इसका पूरा ब्यौरा शताब्दी का सबसे बड़ा जादूगर कविता में है। एक कवि होने के नाते कुमार विकल सबसे अधिक चिंतित हैं कविता को अवसरवाद से बचाने के लिए। वह एक साधारण आदमी के अवसरवाद को तो दुनियादारी मानकर सह सकते हैं, लेकिन एक कवि के अवसरवाद को नहीं, क्योंकि जब कवि शब्दों का अवसरवादी उपयोग करता है तो वह शब्दों की सार्थकता और पृष्ठ संख्या 158 कविता की विश्वसनीयता के लिए खतरा साबित होता है। इसलिए कुमार विकल कविता की दुनिया में फैले अवसरवाद से लड़ने की बात करते हैं। मुझे शब्दों की हिफाजत अपने तरीके से करनी है और पहली लड़ाई उस आदमी के खिलाफ लड़नी है जो शब्दों की अर्थवत्ता को तोड़ता है, और दूसरी उसके विरुद्ध जो शब्दों की अर्थवत्ता को छोड़ता है। कुमार विकल की काव्य अनुभूति की संस्कृति की एक विशेषता स्मृति की रचनात्मक संभावना की खोज है। उसका एक रूप वहाँ दिखाई देता है जहाँ उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील परंपरा से कई रूपों में जुड़ती है। उसमें उस परंपरा की स्मृतियाँ और अनगूंजे मौजूद हैं। वह स्मृतियाँ और अनगूंजे उन कवियों की कविता की हैं जो कुमार विकल के समान धर्मा हैं। यह जुड़ाव कहीं प्रत्यक्ष है तो कहीं परोक्ष। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और सर्वेश्वर की कविताओं की स्मृतियाँ प्रत्यक्ष हैं, लेकिन मुक्तिबोध की कविता की प्रतिध्वनियाँ परोक्ष रूप में हैं। मुक्तिबोध कुमार विकल को अपने समय और समाज के जीवन में गहराते अंधेरे के विभिन्न रूपों को देखने, समझने और पहचानने की दृष्टि देते हैं। कविता में परंपरा की स्मृति तभी सार्थक होती है जब वह नई रचनात्मक संभावना के विकास में मदद करती है। एक सामरिक चुप्पी में नागार्जुन की कविता की स्मृति कुमार विकल की राजनीतिक सजगता को अधिक व्यापक और धारदार बनाती है, तो केदारनाथ अग्रवाल की कविता उन्हें रंग खतरे में है जैसी कविता लिखने की प्रेरणा देती है। सर्वेश्वर की कविता से कुमार विकल के विचारों को नई ताकत मिलती है। कुमार विकल की कविता में हिंदी के जिन कवियों की रचनाओं की स्मृतियाँ और अनगूंजे हैं, उनकी कविता की जड़ें अपने अपने जनपदों की लोक संस्कृतियों और लोक भाषाओं में गहरे स्तर पर दूर दूर तक फैली हुई हैं। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और मुक्तिबोध की कविता के रचाओं में मिथिला, बुंदेलखंड और मालवा की लोक संस्कृतियों और लोक भाषाओं की शक्ति तथा सौंदर्य का सृजनात्मक उपयोग अनेक रूपों में हुआ है। ऐसे में यह स्वाभाविक ही है कि कुमार विकल की कविता अपनी जड़े पंजाब के लोक जीवन, अपनी संस्कृति और भाषा में फैलाए। कुमार विकल ने ठीक ही लिखा है कि इंटरनेट का माँ पंजाबी भाषी होते हुए भी मैं हिंदी कविता की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ हूँ। इंटरनेट का माँ बन जैसे मुक्तिबोध मराठी भाषी होते हुए भी हिंदी कविता की मुख्य धारा के प्रमुख कवि हैं। पृष्ठ संख्या 159। वैसे ही कुमार विकल पंजाबी भाषी होते हुए भी हिंदी के विशिष्ट कवि हैं। कुमार विकल की काव्यानुभूति की संस्कृति में पंजाबीपन अनेक रूपों में है। उसमें पंजाब की प्रकृति से जुड़ी संवेदनाएं हैं, वहाँ के जनजीवन की वास्तविकताएं हैं, उसकी लोक संस्कृति की प्रतिध्वनियाँ हैं और पंजाबी भाषा के गहन शैली की विशेषताएं हैं। कुमार विकल का पंजाबीपन किसी भी तरह उनकी कविता के हिंदीपन को सीमित नहीं करता, बल्कि उसे एक ठोस आधार देता है, जहाँ स्थानीयता की जमीन पर हिंदी कविता खड़ी दिखाई देती है। उनकी कविता में पंजाबीपन और हिंदीपन की सृजनात्मक एकता वैसी ही आकर्षक है जैसी कृष्णा सोबती की कहानियों और उपन्यासों में। कुमार बिकल ने मुक्तिबोध की तरह अपनी मातृभाषा की मदद से हिंदी काव्य भाषा की सृजनात्मक क्षमता और व्यंजना शक्ति को बढ़ाया और व्यापक बनाया है। कुमार बिकल ने कुछ ऐसी कविताएं लिखी हैं जो हिंदी कविता की परंपरा में बेजोड़ हैं। उदाहरण के लिए मृत्यु पर उनकी महाश्वेता, तय तो बहुत कुछ था, मृत्यु गंध, मृत्यु द्वार और महाअंधकार जैसी कविताएं। कहा जाता है कि मृत्यु भाषा के परे होती है, और जो भाषा के परे हो उसे भाषा में बांधना और व्यक्त करना कैसे संभव होगा। लेकिन जब मृत्यु कवि की आंखों में आंखें डालकर उसे लगातार घूर रही हो तो वह उसे कैसे भूल सकता है। कुमार विकल के समाज और निजी जीवन में मृत्यु निरंतर मौजूद थी, कहीं साक्षात यथार्थ के रूप में तो कहीं दुःस्वप्न की तरह, कहीं किसी की स्मृति बनकर तो कहीं संभावना के रूप में। कुमार विकल की काव्य यात्रा मृत्यु के भयावह वातावरण में पूरी होने वाली बीहड़ यात्रा है। वह नक्सलवाड़ी आंदोलन के साथ शुरू होकर उसके खूंखार दमन और आपातकाल के आतंक को पार करती हुई पंजाब में आतंकवाद के दौर में मृत्यु के तांडव के आमने सामने चलती रही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य से कुमार बिकल की कविता की मुठभेड़ आकस्मिक नहीं, स्वाभाविक ही है। मृत्यु का अंधेरा और उसकी छाया एक छोटी सी लड़ाई में भी है, लेकिन वह छाया रंग खतरे में है। तथा निरुपमा दत्त में बहुत उदास हूँ में क्रमशः गहरी होती दिखाई देती है। मृत्यु से संबंधित सबसे अधिक कविताएं निरुपमा दत्त में बहुत उदास हूँ में हैं, क्योंकि उन कविताओं के रचनाकाल में ही मृत्यु से कवि और कविता की मुठभेड़ सबसे अधिक भीषण थी। उस समय कवि अपने परिवेश और जीवन में भी मृत्यु की तेज आहटें लगातार सुन रहा था। उसी समय कवि ने मृत्यु गंध, मृत्यु द्वार और महाअंधकार जैसी कविताएं लिखी हैं। ये कविताएं मृत्यु से एक प्रेमिका की तरह साक्षात्कार और साक्षात्कार की संभावनाओं की कविताएं हैं। इनमें दूसरे कवियों की तरह मृत्यु के बारे में कोई दार्शनिक मुद्रा नहीं है। पहले की एक कविता पृष्ठ संख्या 160 महाश्वेता में मृत्यु को चुनौती देने और उसे अपनी जिजीविषा से पराजित करने का विश्वास है, लेकिन बाद की कविताओं में मौत से मुलाकात के सम्मोहक अनुभव और प्रभाव की मूर्त ऐन्द्रिक बिंबों में अभिव्यक्ति है। कवि कहीं भी मृत्यु से आतंकित और विचलित नहीं है, वह उसकी भयानक रमणीयता पर चकित जरूर है। मृत्यु गंध कैसी होती है, यदि जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ, बैठो, थोड़ी देर में जान जाओगे मृत्यु गंध कैसी होती है। वह एक ऐसी खुशबू है जो लंबे बालों वाली एक औरत के ताज़ा धुले बालों से आती है। तब आप औरत का नाम याद करने लगते हैं, लेकिन उसका कोई नाम नहीं। कुमार विकल कविता पर मुग्ध ऐसे कवि हैं जो कविता की वेदी पर समाज और सामाजिकता की बलि चढ़ा देते हैं। वह कविता की ताकत जानते हैं, इसलिए नए अनुभव, नए अर्थ और नए भाषिक रचाव के लिए संघर्ष करने वाली कविताएं लिखते हैं। लेकिन वह अपने समय और समाज में कविता के प्रभाव की सीमाएं भी पहचानते हैं, इसलिए अपनी कविता से बाहर कविता से कोई बड़ा हथियार गढ़ने की बात करते हैं। बाद के दिनों में कुमार विकल महसूस करने लगे थे कि कविता के जीवन से अधिक व्यापक, जटिल और कठिन है जीवन की कविता। तभी उन्होंने लिखा था, जीवन भर की व्यथा कथा को कविता में कहना चाहा था, एक सुलगते वन का मैंने महाकाव्य लिखना चाहा था, लेकिन प्रभु जी महाकाव्य से जीवन जंगल बहुत बड़ा था और हमारा जीवन जल भी धीरे धीरे सूख चला था। कविता को अपना पूरा जीवन सौंप देने वाले एक कवि की यह पारदर्शी ईमानदारी क्या वर्तमान समय में कविता की विडंबनापूर्ण स्थिति का द्योतक नहीं है। पृष्ठ संख्या 161। कविता के बारे में कवि की यह भावना रंग खतरे में है कि एक नास्तिक के प्रार्थना गीत खंड की सभी कविताओं में कई रूपों में मौजूद है। ये कविताएं अपनी बनावट और आकांक्षा में ऐसी हैं जिन्हें कवि के शब्दों में शरारती कविता कहा जा सकता है। इनमें भाव कबीर जैसा है और बयान का अंदाज गालिब का सा। ये नितांत निजी रूप में लिखी अत्यंत सार्वजनिक कविताएं हैं। हिंदी में ऐसी कविताएं लिखने का साहस केवल कुमार विकल ने किया है। कुमार विकल की कविता एक बेचैन मन की कविता है, इसलिए वह प्रत्येक संवेदनशील पाठक को भी बेचैन करने वाली कविता है। कविता की बेचैनी समकालीन स्थितियों और समस्याओं के प्रति गहरी संवेदनशीलता से पैदा हुई है। उन्होंने डरा हुआ आदमी कविता में लिखा है, इस घातक व्यवस्था में हर पतली त्वचा वाला आदमी आरक्षित है। देखना तो यह है कि कौन बैसाखियों के सहारे जीता है और कौन बिना बैसाखियों के अपने नंगे शरीर से किसी सुखद या दुखद अंत तक जूझा है। कुछ रचनाकार समकालीन समस्याओं और तत्कालिक अनुभवों से अपनी रचनाशीलता को बचाते हैं, क्योंकि अपने अनुसार जब वह स्थितियां बदल जाएंगी और समस्याएं सुलझ जाएंगी, तब उनसे जुड़ी रचनाएं भी निरर्थक हो जाएंगी। इसीलिए वह अपनी रचनाओं की शाश्वतता के लिए कभी व्यक्ति मन की अनजानी गहराइयों में उतरते हैं, तो कभी शाश्वत समझे जाने वाले विषयों की ओर लपकते हैं। इस प्रवृत्ति के ठीक विपरीत कुमार विकल अपने समय और समाज के मनुष्य की जिंदगी की पीड़ा, उसकी यातना, उसकी आस्था के विघटन और उसकी जिज्ञासा से एकता अनुभव करते हुए जो बेचैनी महसूस करते हैं, उसे कविता में व्यक्त करते हैं। कुमार विकल की बेचैनी जितनी राजनीतिक है, उतनी ही नैतिक भी। वह एक ओर भारत में फैलते वनतंत्र में साधारण आदमी को लगातार असुरक्षित देखकर बेचैन होते हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षा की चाहत के शिकार मनुष्य की मरती हुई मनुष्यता भी उन्हें बेचैन करती है। कुमार विकल की कविताओं का पाठक यह अनुभव करता है कि हम एक ऐसी मनुष्य विरोधी व्यवस्था में जी रहे हैं जो लगातार असामाजिक मनुष्य पैदा कर रही है, और वह असामाजिक मनुष्य व्यवस्था और पूरे समाज को अधिकाधिक मनुष्य विरोधी बनाने में लगे हुए हैं। इस दुष्चक्र में व्यक्ति की सामाजिकता और उसकी मानवीयता हमेशा खतरे में है। इस स्थिति का बोध कराती हुई कुमार विकल की कविता पाठक को एक ओर बेचैन करती है, तो दूसरी ओर उसे सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाती है। आज के समय में किसी कवि और कविता की सामाजिक सार्थकता इससे अधिक और क्या होगी।